ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम् चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 32। अगस्त्यः प्राक् दुहितरम् उपयेमे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जातः इद्मवाह आत्मजः मुनिः। अगस्त्यः प्राग् दुहितरम् उपयेमे धृतव्रताम् यस्यां दृढच्युतो जातः इद्मवाहात्मजो मुनिः। अगस्त्यः प्राग् दुहितरम् उपयेमे धृतव्रताम् यस्यां दृढच्युतो जातः इद्मवाहात्मजो मुनिः। अगस्त्यः प्राग् दुहितरम् उपयेमे धृतव्रताम् यस्यां दृढच्युतो जातः इद्मवाहात्मजो मुनिः।
अगस्त्यः प्राग् दुहितरम्
उपयेमे
दृढव्रताम्
यस्यां दृढच्युतो जातः इद्मवाहात्मजो मुनिः।
अगस्त्यः प्राग् दुहितरम्
उपयेमे धृतव्रताम्
यस्यां दृढच्युतो जातः
इद्मवाहात्मजो मुनिः। अगस्त्य मुनि ने प्राक् पहली
दुहितरम्
कन्या को उपयेमे विवाह दिया
धृतव्रताम्
व्रत धारण किए
यस्याम्
जिससे दृढच्युत नामक जातः
उत्पन्न हुआ
इद्मवाह नामक आत्मजह
पुत्र
मुनि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलय ध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं करती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलयध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं। असिते क्षणाम, कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जी की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्मयोग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि कोई वह भक्ति में स्थिर या दृढ़ है तो वह गिरता नहीं है। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और दृढ़च्युत से इद्मवाह उत्पन्न होता है। इद्मवाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ संविधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाले कभी नहीं गिरता और उससे जो पुत्र होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छेत् समित्वाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। अनुवाद को दोहराइए। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ
जिसका नाम
दृढ़च्युत था।
जिससे
इद्मवाह
नामक एक पुत्र
उत्पन्न हुआ। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज हमारे बीच कई भक्त नहीं हैं क्योंकि खेती के काम शुरू हो गए हैं, तो खेती के लिए अनेक भक्त गए हैं। थोड़े भक्त पंढरपुर गए हैं, थोड़े बीमार हैं, लेकिन जितने भी हैं कथा तो जारी रहनी चाहिए। तो आज हमारे बीच में श्रीमान विवेक पेठकर जी हैं जो पुणे से आए हैं। वो एक कार्यनिवृत्त वैज्ञानिक है, वो भी आप एयरफोर्स में थे ना? एयरफोर्स में थे और अभी यहाँ पे सेवा के रूप में गुरुकुल की जमीन की वास्तु वगैरह की कल्पना उन्होंने दी है, तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं कि वो आज हमारे बीच में आए हैं। आशा करते हैं कि यहाँ पर भी आपको अच्छा लगे और आपकी यहाँ बेलगाम की यात्रा बहुत सुखद और प्रेरणादायक हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषत को उपदेश दे रहे हैं। नारद मुनि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। जो भक्त होते हैं वो भक्ति की ही उपदेश देते हैं, भक्ति पद के अतिरिक्त और किसी अन्य बात का उपदेश नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग में आगे जाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। तो जब नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषत या राजा बर्हिषत, उनका नाम प्राचीन बर्हिषत इसलिए है कि वो बहुत बूढ़े थे, प्राचीन, इसलिए प्राचीन शब्द जुड़ गया उनके नाम से, बर्हिषत से हो गए प्राचीन बर्हिषत। तो ये राजा प्राचीन बर्हिषत बहुत ही कर्मकांड में लगे हुए थे। कर्मकांड अर्थात वेदों की वो विधियाँ जिनका पालन करके हम हमारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये धार्मिक है परंतु आध्यात्मिक नहीं है। हर धार्मिक वस्तु आध्यात्मिक नहीं होती। धार्मिक स्तर पे कई वर्ग भी होते हैं। जो साधारण धर्म होता है, भौतिकतावादी धर्म होता है, साधारण धर्म होता है, और अलौकिक या दिव्य धर्म होता है। तो ये कर्मकांड आदि जो है ये सब साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म इसलिए हम ये कहते हैं क्योंकि कम से कम ये शास्त्रों के आदेशों के अनुसार तो कुछ कर रहे हैं। यदि कोई मनमाने ढंग से शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करके, भगवान की परवाह न करके केवल भोग करना चाहता है और भोग के साधन एकत्र करने के लिए वो जो भी कुछ करता, जो जैसे मन चाहता है उसका वो करता है, तो फिर वो वो पापी कहलाता है, कर्मी कहलाता है, वो कर्मकांडी नहीं है। कर्मकांडी वो है जो भला कुछ भोग करना चाहता है, परंतु जो शास्त्रों में बताए हुए, धर्म शास्त्रों में बताए हुए पद्धति के अनुसार करता है। तो ये कर्मकांड भी आध्यात्मिक न होने के कारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझ नहीं पाता है। उसकी जीवन का लक्ष्य इस संसार के भीतर ही रहता है। ज्ञान के अभाव के कारण वो ये नहीं समझता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि से परे है। कर्मकांडी लोग न केवल पृथ्वी लोक पर रह के कुछ भौतिक सुख या सुविधा की अपेक्षा करते हैं, परंतु आने वाले जन्म में वो स्वर्गलोक की प्राप्ति भी करना चाहते हैं। स्वर्गलोक भी भौतिक ब्रह्मांड का ही एक भाग है, और यदि कोई स्वर्गलोक को प्राप्त हो भी जाता है तो पुनः उसे यहाँ पर मर्त्यलोक में अर्थात पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पुण्य की पूंजी एकत्र करने के बाद व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके। परंतु जब पुण्य की पूंजी क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर उसे नीचे यहाँ पृथ्वीलोक पर आना ही पड़ता है, बलपूर्वक उसे यहाँ पे भेजा जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे ही उसकी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर मर्त्यलोक या पृथ्वीलोक पर जबरदस्ती वो फेंक दिया जाता है, उसे आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाता है, फिर से यहाँ कुछ ना कुछ कार्य कर, कोई ना कोई कार्य करता है। यदि पाप करता है तो उसे निम्न श्रेणी की योनियों में जाना पड़ता है, कभी नरक लोक में जाना पड़ता है। पुण्य करता है तो कभी स्वर्ग लोक में जाता है, या कभी कभी पृथ्वी लोक पर ही जन्म लेता है, कभी मनुष्य योनि में, कभी अन्य योनियों में। तो इस प्रकार से उसके जन्म मृत्यु का चक्र चालू रहता है, निरंतर अनादिकाल से ये चक्र चलते आ रहा है। और यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति के पथ में अपने आप को स्थित न करे तो फिर निश्चित ही ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए कर्मकांड को स्वीकार करने वाले लोग धार्मिक हैं परंतु आध्यात्मिक नहीं है। अब यदि कोई कहे कि ठीक है, अभी आध्यात्मिक हुए बिना धार्मिक होने में अधिक लाभ या वास्तविक लाभ नहीं है, ये सही है। धार्मिक तो कम से कम होना चाहिए, परंतु आगे चल के भक्ति भी करनी चाहिए। जैसा कि माता देवहूति कपिल देव से कहती हैं, नेह यत कर्म धर्माय। कोई श्लोक जानते हैं?
नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सः।
जीवन
अपि मृतोपि सः।
मृतोपि सः, तो इसका शब्दार्थ करके, शब्द भेद करके अर्थ
निहायत कर्म धर्माय, कि धर्म में कर्म का होना चाहिए, कर्म से धर्म। निहायत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते।
निहायत कर्म धर्माय का अर्थ है कि हम केवल कर्म करेंगे परंतु धार्मिक कार्य नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि कम हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है, परंतु ये सही नहीं है। केवल कर्म करना इतना पर्याप्त नहीं है, हमें हमारे कर्मों को धर्म से जोड़ लेना चाहिए। तो नेहयत कर्म धर्माय, तो धार्मिक कार्य करने चाहिए, धर्म के लिए कार्य करने चाहिए। तो एक स्तर होता है जब व्यक्ति केवल कर्म करता है और उसमें कोई धर्म की उपस्थिति होती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? जीवन नपि मृतो हि सः। जीते हुए भी ऐसा व्यक्ति मृत है, शव है, तो जो व्यक्ति केवल कर्म करता है परंतु कर्म करने के बाद भी धर्म से उसके कर्म जुड़ते नहीं है, तो वो जीते हुए जीता हुआ एक शव है। तो नेह यत कर्म धर्माय न वैराग्य उपकल्पते। तो यदि कोई धार्मिक कार्य कर रहा है परंतु ऐसे धार्मिक कार्य करने के फलस्वरूप उसके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती है तो फिर भी जीवन नपि मृतो हि सः, तो जीते हुए भी वो मृत व्यक्ति के समान है। और यदि कोई व्यक्ति विरक्त है न तीर्थ पद सेवाये, परंतु तीर्थ पद कृष्ण की सेवा नहीं करता है वो, तो फिर भी जीवन नपि मृतो हि सः, जीते हुए भी एक शव के समान है। भगवान कृष्ण का नाम तीर्थ पद क्यों है? तीर्थ पद भगवान कृष्ण जिनके चरण कमलों में समस्त तीर्थ स्थान निवास करते हैं उनका नाम है तीर्थ पद। तो तीर्थ पद सेवा यही न तीर्थ पद सेवा ये, तो वैराग्य होने के बाद भी यदि किसी के अंदर तीर्थ पद या भगवान कृष्ण की सेवा की वृत्ति नहीं है, वो सेवा नहीं करता अर्थात वो भक्त नहीं बनता, तो फिर भी जीवन नपि मृतो हि सः। तो कोई बहुत ही विरक्त व्यक्ति है, वैरागी है, जंगल में रहता है, कोई हिमालय में रहता है, एकांत स्थान में रह के कुछ अपनी कड़ी तपस्या करता है, परंतु यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हो तो वो भी एक जीवित शव है। तो इस प्रकार से कितने स्तर बताए गए हैं यहाँ पर। पहला स्तर है साधारण कर्म, दूसरा स्तर है धार्मिक कर्म, तीसरा स्तर है वैराग्य, चौथा स्तर है भक्ति। और केवल जब व्यक्ति भक्ति करता है तब जाके वास्तव में ऐसे कहा जा सकता है कि ये जीवित है। अन्य जो है वो जीवित तो है एक दृष्टि से, परंतु उसी प्रकार से जैसे मनुष्य, जैसे पशु आदि है। कम से कम जो धार्मिक क्रिया करते हैं, जो वैराग्य है, कम से कम ठीक है, उनको कुछ तो पता चला है कि जीवन का उद्देश्य हमारी इंद्रियों को तृप्त करने से अतिरिक्त भी कुछ है। फिर भी वास्तविक जीवन का उद्देश्य न मालूम होने के कारण फिर भी उनका मनुष्य जीवन सफल नहीं होता है। तो ये श्लोक बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर श्लोक है। फिर से ये श्लोक कहेंगे, नेह यत कर्म धर्माय न वैराग्य उपकल्पते न तीर्थ पद सेवाये जीवन्नपि मृतो हि सः। ठीक है, बराबर, बहुत अच्छा। तो इसलिए कोई धार्मिक कार्य कर रहा है और ये राजा प्राचीन बरिषद कौन से स्तर पे थे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे,
दूसरे
स्तर में थे। धार्मिक थे वो, कर्मकांड का पालन अच्छी तरह से करते थे, परंतु वैराग्य की भावना नहीं थी उनके अंदर। बहुत आसक्त थे अपने परिस्थिति से, अपने भोग से, अपने समृद्धि साम्राज्य आदि से, तो इसे वैराग्य नहीं था उनके अंदर। और नारद मुनि चाहते थे कि उनको सीधे भक्ति के पथ में ले आए। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वैराग्य ज्ञान अपने आप आ जाता है। श्रीमद् भागवतम का कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? बहुत अच्छा, तो शब्द भेद करके अर्थ समझाइए।
वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में भक्ति योग प्रयोजित है, जो भक्ति योग से लगा होता है। जनयति आशु, जनयति आशु, अति शीघ्र ही उत्पन्न करते हैं क्या ज्ञानम च आयतुकम जनयत्रासु वैराग्यम ज्ञानम च वैराग्य ज्ञान दोनों अति शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है।
बहुत अच्छा। तो जो व्यक्ति वासुदेव की भक्ति करता है, वासुदेव कौन है? भगवान, भगवती अर्थात भगवान को। तो जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, तो अपने आप को जोड़ लेता है वासुदेव भक्ति से, जनयति उत्पन्न होता है आशु बहुत ही शीघ्र वैराग्य और ज्ञान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं बार बार कि अलग से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने आप वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो फिर क्या जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा वैराग्य नहीं चाहिए? हम तो भक्ति कर रहे हैं, फिर ये सब अभी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उस श्लोक में तो कहा गया है कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। इसका उत्तर क्या है?
ये जो ज्ञान है ये भक्ति का ज्ञान नहीं है, ये जो ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान है, नैति वो ज्ञान आवश्यकता नहीं, भक्ति का ज्ञान तो आवश्यक है श्रीमद् भागवत का।
बहुत अच्छा। तो दो प्रकार के, वैसे कई प्रकार के ज्ञान होते हैं, लेकिन केवल आज की चर्चा के लिए दो प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। एक जो निराकारवाद की दिशा में जब व्यक्ति को ले जाता है वो ज्ञान है एक प्रकार का, और दूसरे प्रकार का ज्ञान है जो हमें भगवान की अहितु की शुद्ध भक्ति की ओर ले जाता है। तो ज्ञान शब्द एक बहुत साधारण शब्द है, परंतु इसका तात्पर्य बहुत गहरा है और उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। साधारण ज्ञान को भी ज्ञान बोलते, जैसे अभी कोई पाठशाला में जाके बच्चा पढ़ रहा है गणित इतिहास पढ़ रहा है, तो ये भी हम कहते हैं ज्ञान। ये एक साधारण भाषा में ऐसे बोल लेते हैं। कभी कभी और गहराई में जाने के बाद जब ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग अर्थात वो आध्यात्मिक मार्ग जिस पे चलने से अंततः हम भगवान के निराकार स्वरूप में लीन होने के उद्देश्य को मन में रखते हैं, तो ज्ञान जब शब्द ऐसा प्रयोग किया जाता है कि ये ज्ञानी है, तो हम ऐसे ज्ञान योगी की बात करते हैं। कभी कभी ज्ञानी भक्त को भी कहते हैं, क्योंकि भक्त के पास सही ज्ञान होता है, तो भक्ति का ज्ञान भी होता है। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो जो श्रीमद् भागवतम के अंदर है ये सब भक्ति का ज्ञान है, इसलिए ये श्रेष्ठ ज्ञान है। उसी प्रकार से वैराग्य, किस प्रकार के वैराग्य की बात यहाँ उस श्लोक में की गई है? वासुदेव भगवती निराकारवाद ज्ञान मार्ग के वैराग्य से की गई है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि ये ज्ञान वैराग्य आदि, इसके आधार पे, वैराग्य के आधार पे हम ये तीन मार्गों को समझ सकते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जब वैराग्य बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, तो कोई वो व्यक्ति कर्म मार्ग के लिए अधिकारी हो जाता है, उसकी योग्यता कर्म के लिए, कर्म भोग करने के लिए हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अति वैराग्य में रुचि रखता है तो फिर वो ज्ञान मार्ग के लिए योग्य हो जाता है, ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो जाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति मध्यम रीति से वैराग्य को स्वीकार करता है और उसे भगवान की भक्ति में रुचि होती है श्रवण कीर्तन में, तब वो भक्ति के लिए अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। तो वैराग्य तीन प्रकार के हो सकते हैं, बहुत कम, मध्यम और अत्यधिक। तो जिनका वैराग्य अत्यधिक है वो भक्ति में टिक नहीं पाएंगे, उनको भक्ति ठीक नहीं लगेगा, वो ज्ञान मार्ग की ओर चलेंगे। जिनको वैराग्य होता ही नहीं है, उनकी भावना ही नहीं है, तो फिर वो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो कर्म मार्ग में चले जाएंगे। बीच में है भक्त, भक्तों का भी वैराग्य होता है, जैसे हम चार नियमों का पालन करते हैं, प्रातःकाल में सुबह उठते हैं, हम जल्दी उठते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का वैराग्य है, परंतु मध्यम वर्गीय वैराग्य है। तो जब जनयतु आशो वैराग्यम ज्ञानम च यद् अहितुकम् इसकी बात की गई है, तो जिस ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हो रही है इस श्लोक में, वो ज्ञान मार्ग से संबंधित ज्ञान और वैराग्य है या साधारण ज्ञान और वैराग्य से संबंधित है। तो कि ये अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु भक्ति पथ में जब हम आते हैं तो भक्ति के साधन के अंतर्गत ही ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करना यह होता है। यद्यपि चार नियमों का पालन करना ये अपने आप में भक्ति नहीं है, फिर भी ये इसके अंतर्गत ये आवश्यक है। वैराग्य, ये चार नियम अर्थात क्या, ये तो वैराग्य ही है, परंतु ज्ञान भी ये आवश्यक है, जैसे भागवत का ज्ञान, गीता का ज्ञान आवश्यक है। तो क्या नारद मुनि चाहते हैं कि राजा प्राचीन बरहिष्यत को इस कर्मकांडीय विचारधारा से, मानसिकता से उठाकर भक्ति के रास्ते में लाएं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी को पहले ज्ञान योग के मार्ग में ले आएं, उसके बाद उठाकर भक्ति योग के मार्ग में ले आएं। नहीं, सीधे जहाँ भी व्यक्ति स्थित हो, चाहे वो घोर से घोर पापी हो, कोई कर्मकांडी हो, कोई कर्मयोगी हो, कोई ज्ञान योगी हो, यदि ऐसे व्यक्ति को नारद मुनि जैसे भक्तों का संग मिल जाए तो वो सीधे भक्ति में आ सकते हैं। उनको क्रमशः एक के बाद एक अलग अलग स्तरों से होके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे भक्ति मार्ग में आ जाता है। तो नारद मुनि जैसे भक्त, इनका उद्देश्य यही एकमात्र होता है, कैसे लोगों को सीधे भगवान कृष्ण के भक्ति में ले आए। तो अब नारद मुनि ने देखा कि राजा प्राचीन बरहिष्यत बहुत आसक्त हैं, इसलिए कर्मकांड इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं, परंतु कैसे उनको भक्ति में ले लाया जाए। ऐसे ही किसी को कहेंगे कि भाई आप कर्मकांड छोड़ो, भक्ति में आओ, तो हो सकता है वो नहीं माने, न मान पाए, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है मानसिक। तो इसलिए नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि तो बहुत ही दक्ष प्रचारक है। अच्छा प्रचारक कौन होता है, जिसको पता होता है कि सामने वाले की मानसिकता और देश काल के अनुसार कैसे प्रचार करना चाहिए। एक तरह का प्रचार हर व्यक्ति को हर समय हर परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कभी कभी कुछ न बोलना ये भी एक प्रचार होता है, कभी कभी बहुत कुछ बोलना ये प्रचार होता है। तो इस तरह से दक्ष प्रचारक वो होता है जो जानता है कि देश काल पात्र के अनुसार क्या बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो प्रचार का अर्थ क्या है, प्रचार एक वो कार्य है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास किया जाता है। अंततः यदि वो व्यक्ति भक्ति में आए न आए, वो उसके और भगवान के बीच में है, परंतु प्रचारक को भी चाहिए कि वो बहुत सोच विचार करके समझ ले, समझदार हो जाए, और वो जान ले कि सामने वाले को किस तरह से प्रचार करना चाहिए ताकि वो भक्ति में रुचि लेना शुरू कर ले। तो नारद मुनि ने फिर ये उपाख्यान बताया, उपाख्यान, उपाख्यान अर्थात कहानी, कथा, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ये जो उपमाएं, उपमाओं युक्त उपाख्यान है, ऐसे कई दिखाई पड़ते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि लोग कहानियां सुनना पसंद करते हैं। तो कहानियों के द्वारा भी यदि कोई उपदेश मिल सकता है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, हो जा होता है। तो नारद मुनि ने ये बहुत लंबे लंबा उपाख्यान कहा राजा प्राचीन परिषद से, परंतु इतनी गहरी बातें इस चीज़ में। वास्तव में यदि किसी को पढ़ना है तो किताब लिए, किताब लेके लिख के बिना ये समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, याद नहीं रहेगा। कितने सारे चीज़ें हैं, राजा पुरंजन की कथा उन्होंने बताई, राजा पुरंजन अर्थात जीव। तो वो इस पुरंजन के व्याख्यान से बताना चाहते थे कि बद्ध जीव की परिस्थिति क्या होती है भौतिक जगत में, क्या हाल होता है उसका। तो इसलिए उन्होंने सारे पुरंजन की कथा बताई कि पुरंजन के कितने पत्नियाँ थे, रानियाँ थी, बच्चे थे, उसके सैनिक थे इत्यादि, उसका राजमहल था, उसका राज्य था। परंतु फिर एक आक्रमण हुआ, आक्रमण अर्थात किसने किया,
काल कन्या।
तो ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब आक्रमण करते रहे। और पुरंजन निवास कहाँ करते हैं, एक ऐसे किले में जिसके 9 द्वार हैं अर्थात शरीर। तो ऐसे उपमाएं अनेक हैं इस कहानी में, सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में। तो अब राजा पुरंजन की कथा आगे बढ़ाते बढ़ाते, अब पुरंजन की मृत्यु हो भी गई है, और होके क्योंकि पुरंजन राजा अपने पत्नी से बहुत आसक्त थे, तो इसलिए मृत्यु के समय अपने पत्नी का स्मरण उन्होंने किया। तो क्योंकि एक स्त्री का स्मरण करते हुए प्राण को त्याग दिया राजा पुरंजन ने, इसलिए अगले जन्म में उन्हें एक स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। परंतु क्योंकि वो थोड़े पुण्यवान थे, धार्मिक थे, इसलिए उनको शरीर भी बहुत सुंदर मिल गया, और वो राजा विदर्भ के पुत्री के रूप में जन्म उन्होंने लिया, और पुत्री का नाम था वैदर्भी। तो फिर वैदर्भी का विवाह एक राजा से हुआ जिसका नाम था मलयध्वज। तो ये मलयध्वज वो इतिहास के मलयध्वज नहीं है, ये तो एक काल्पनिक कथा जो बोल रहे हैं राजा नारद मुनि। ये जो इतिहास में प्रसिद्ध राजा मलयध्वज हैं वो नहीं है ये, और नहीं जिस अगस्त्य मुनि का उल्लेख यहाँ हो रहा है वो भी वो अगस्त्य मुनि नहीं है, ये काल्पनिक अगस्त्य मुनि हैं, काल्पनिक मलयध्वज हैं। तो जो असली मलयध्वज राजा हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, किसी को पता है? ये तो नकली राजा मलयध्वज, कहानी के मलयध्वज राजा हैं।
मयोध्वज से मयूर ध्वज
वो है, मलय ध्वज नहीं, मयूर ध्वज,
दानवीर
मयूर ध्वज, मलय ध्वज ने, हाँ करेक्ट। तो ये मलय ध्वज नाम दिया उन्होंने। तो मलय अर्थात मलय चंदन, देश का नाम, जिस प्रांत से ये चंदन पाया जाता है उसको मलय कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नीलगिरी को मलय कहते हैं, कभी कभी कहते हैं मलेशिया जो देश है उसको भी मलय कहते हैं। तो ये मलय ध्वज है, मयूर ध्वज नहीं, मयूर ध्वज है जो दानवीर हैं, है ना। तो एक मलय ध्वज राजा के साथ विवाह हुआ, वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, ऐसे नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। तो फिर जब वैदर्भी का विवाह मलय ध्वज राजा से हुआ तो उनका एक पुत्र हुआ, पुत्री हुई पहले, पुत्री का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। ये भी मूल अगस्त्य मुनि नहीं है, ये कहानी के अगस्त्य मुनि हैं। और अगस्त्य मुनि और मलयध्वज की पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम था दृढ़च्युत, और दृढ़च्युत के पुत्र थे इद्मवाह। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी में क्या कहते हैं या तात्पर्य कि ये कौन है, किनके प्रतीक हैं, बताइए पढ़ो। इसके पहले पुत्री मलयध्वज की पुत्री कौन है, और फिर अगस्त्य मुनि कौन है, और फिर दृढ़च्युत कौन है, और इद्मवाह कौन है, क्या है, क्योंकि एक उपमा है ना ये।
अगस्त्य जो है द सेंसेस,
अगस्त्य अर्थात इंद्रियां, मुनि अर्थात मन। तो मन उन इंद्रियों का की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट, जो कॉम्बिनेशन संयोग है, इसको अगस्त्य मुनि, ये अगस्त्य मुनि है। तो जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि मन प्रमुख इंद्रिय है, और इंद्रियों का जैसे चांद को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, तो सारी इंद्रियां मन से संबंधित होते हैं। जैसे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वैसे ही इंद्रियां भी मन को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करती हैं। तो ये मन और इंद्रियों को, वैसे ये मन बहुत अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित होने के कारण ये व्यक्ति को बहुत कष्ट देता है। तो भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं कि जब मन नियंत्रित होता है वो व्यक्ति का मित्र बन जाता है, जब मन नियंत्रित नहीं होता है तो व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का?
बंधुर आत्मात्मनस्तस्येन आत्मैव आत्मनाचिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मा शत्रु।
बहुत अच्छा। तो क्या अर्थ है इसका?
बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, कि जिसने मन के नियंत्रण किया वो उसका बंधु बन जाता है, और जब ये अनियंत्रित हो जाता है अनात्मनस्तु शत्रुते वो आपका शत्रु
बन जाता है। बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं कि मन जो बद्ध अवस्था में शत्रु होता है व्यक्ति का, उसे मित्र कैसे बनाया जाए, उसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने से वो मन नियंत्रित हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए आगे पढ़ो तात्पर्य में, और उपमाएं कौन सी दी हैं कि अगस्त्य मुनि तो ये हो गए, और अगस्त्य मुनि की पत्नी अर्थात मलयध्वज राजा की
पुत्री
ये कौन है, ये पुत्री कौन है,
ये द कल्ट ऑफ भक्ति इज द फर्स्ट डॉटर ऑफ मलयध्वज।
सही है, अगस्त्य मुनि का विवाह हुआ मलयध्वज राजा की पुत्री से। अगस्त्य मुनि कौन है? मन और इंद्रियां, और विवाह होना अर्थात संयोग होना। तो फिर उनकी पत्नी कौन है? भक्तिलता, भक्तिलता है ना, भक्ति की पद्धति। जब मन और इंद्रियां भक्ति में लग जाती हैं तो वह स्थिर हो जाते हैं। और इनका पुत्र कौन है? दृढ़च्युत। तो दृढ़च्युत का तात्पर्य क्या है शब्द का?
कौन है? भक्तिलता।
शब्द से आपको संकेत में या दृढ़ इसलिए जब मन और इंद्रियां साधन भक्ति में लग जाती हैं तो क्या उत्पन्न होता है? दृढ़ता। वो दृढ़ता जिसके द्वारा व्यक्ति का पतन नहीं होता है, दृढ़च्युत। कभी च्युत या उसका पतन नहीं होता, इसलिए पुत्र का नाम क्या है? दृढ़च्युत। और फिर आगे इद्मवाह का तात्पर्य क्या है?
इद्मवाह रेफर्स टू वन हु कैरीज wood for burning in a sacrifice when approaching a spiritual master.
So, tatparya, again?
The point is that Bhakti Lata, the cult of devotion, fixes one in his spiritual position. One so fixed never comes down as he begets children who are strict follower of the Shastric injunction. Tad vijnanatam sadhrum eva abhigachat.
So, samit. Jab aise dhrita mein hai, to phir kya hota hai? But dhrachita se idmavaha, arthat wo shastron ke niyamon ka पालन शक्ति से करता है, इसका ही इत्मवाह। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी उपनिषदों का श्लोक बता रहे हैं ना, तद् विज्ञानार्थम सगुरुमिवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्। समित्पाणिः क्या है? ये समित्पाणिः समिधा जो होता है, जो अग्नि में अर्पण किए जाते हैं यज्ञ के लिए। पाणि मतलब हाथ। तो शिष्य जब पुराने समय में गुरुकुल में रहते थे तो ऐसे जाके ऐसे ये समिधा आदि सब समित इकट्ठे करके फिर लाते थे। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होता है वह वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब तात्पर्य है। अलय ध्वज के पुत्री भक्ति भक्ति लता का विवाह हुआ अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि कौन है? इंद्रिय और मन। जब वे भक्ति में लग जाते हैं इंद्रिय और मन, तो फिर व्यक्ति क्या होता है? दृढ़ता से पालन करने लगता है और फिर शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलता है। अब पहले तो बता रहे थे कि कैसे राजा पुरंजन का पतन हो गया। अभी धीरे धीरे से ये बता रहे हैं कैसे उद्धार होना। उद्धार की पद्धति का वर्णन अब शुरू हो गया है। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका?
आज भगवत गीता में ज्ञान को आह्वानित अवलंबितम। भगवत गीता में ज्ञान के लिए अमानितम अडम्बितम अहिंसा शांति, ये 18 जो है ज्ञान है, इसको छोड़ के बचा हुआ अज्ञान। तो ये अमानितम और ज्ञान, ये हम लोग को कैसा ये समझना है? ये व्यक्ति ज्ञानी है तो वो नम्र रहता है। तो
पहला ही लक्षण ज्ञान का क्या है?
वो नम्र,
अमानितम है ना। तो यदि कोई नम्र नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान की बात जब होती है तो ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये केवल बौद्धिक स्तर का ज्ञान नहीं है। ये जब विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके आचरण में दिखाई पड़ता है, उसकी मानसिकता में इसका असर पड़ता है, तब जाकर वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। यदि किसी के अंदर अहंकार है तो कैसे हम समझ सकते हैं कि वो ज्ञानी है? भौतिक दृष्टि से वो ज्ञानी हो सकता है, बहुत पंडित हो सकता है बड़ा, ऐसे इतिहास में बहुत सारे हुए हैं और आज भी दिखाई पड़ते हैं जो भौतिक ज्ञान में बहुत विद्वान हैं परंतु अहंकारी भी होते हैं। अपनी विद्वत्ता का अहंकार होता है, ज्ञान घमंड होता है। तो वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से वो ज्ञानी नहीं है।
महाराज, जो भक्त होते हैं केवल भक्ति के बारे में ही प्रचार करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि सीधा भक्ति के बारे में नहीं बताते हुए अन्य मार्गों वगैरह
ज्यादातर तो भक्ति के बारे में ही प्रचार होता है। और यदि कोई और विषय से संबंध करता हो सकता है, उनके कोई विचारधारा कि किसी न किसी तरह से लोगों को कैसे इस रास्ते में लाना है, कैसे उनसे संपर्क स्थापित करके फिर धीरे से उनको इस भक्ति पथ की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो श्रोता जो हैं वो सीधे भक्ति के उपदेश के लिए तैयार न हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बता के उनको धीरे धीरे से इस रास्ते में लाना, ऐसे भी हो सकता है एक उद्देश्य या कारण इसके पीछे। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने ये स्पष्ट पहले से ही कहा कि ये केवल भक्ति का ग्रंथ है श्रीमद्भागवतम, फिर भी अन्य पद्धतियों का इतना वर्णन और इतने विस्तार में सुखदेव गोस्वामी ने क्यों किया? ज्ञान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में बहुत कुछ उन्होंने किया है, विराट रूप के बारे में, ये सब विराट रूप आदि के बारे में भक्तों को कोई रुचि नहीं आती ज़्यादा, इसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, तो फिर ये सब क्यों बताया सुखदेव गोस्वामी ने?
उधर का ऑडियंस पूरा हो चला,
क्योंकि जो वहाँ पे श्रोतागण थे वो सारे के सारे भक्त नहीं थे, कोई ज्ञानी था, कोई योगी था, कोई वैरागी था, कोई कुछ कोई कुछ, और थोड़े शुद्ध भक्त भी थे, तो उनको वो धीरे से दशम स्कंद के तक लाना चाहते थे, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे, परंतु सीधे ही बस उतना ही एक ही विषय के ऊपर चर्चा करते तो शायद ये अन्य जो लोग थे यानी योगी इत्यादि वो इसे स्वीकार कर पाते, ये नहीं एक प्रश्न था, तो इसलिए उन्होंने यह कई बार यहाँ वहाँ की बातें भी कर दी। जैसे कई बार हम देखते हैं कि भागवत में ऐसे भी बताया जाता है, इस कथा को हम जो भी सुनता है उसे बुरे सपने नहीं आएंगे, उसके तरह तरह कष्टों से मुक्त हो जाएगा, तो जब भागवतम शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, महान वैष्णवों के लिए है, तो ये सब चीज़ें क्यों बताई गई हैं, ऐसी इस तरह के फलश्रुतियाँ क्यों बताई गई हैं, ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए जो सीधे शुद्ध भक्ति के रास्ते को स्वीकार करने में या तो हिचकिचाएंगे या तो फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो किसी न किसी तरह से उनको इस रास्ते में लाना, तो सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसे ही रस्सी खोल ली और सबको जो भी उपस्थित वहाँ था उन सबको बांध दिया, बांध कर फिर धीरे धीरे से उनको दशम स्कंद के स्तर तक लेकर आई।
मगर ये मनुष्यानाम शास्त्रेषु ऐसा लिखते हैं, अभी का इसमें ऐसा बोला तो ये एक्चुअली श्रोतागण से ज़्यादा जो वक्ता है उसका हाथ में है इन सबको ऊपर लेके आना, क्योंकि श्रोतागण में वो लोग वही स्तर पे है, वे कर्मकांडी को अभी इसमें भी एक कर्मकांडी है, मगर नारद मुनि जो हैं उनको शुद्ध भक्ति में अभी लेके आ रहे हैं। उसी प्रकार इधर आप विराट में कोई है ज्ञानी है कर्मी है तो उन सबको ऊपर लेके आने का जो काम है वो वक्ता कर रहे, स्रोतगण वही स्तर पे है और उनको लेके आने का काम जो है वो भक्त कर रहे, तो जब ये मनुष्यानाम सहस्रेशु जब बोलते हैं तो ये उनका स्तर है, मगर शुद्ध भक्त का जो काम है इन सबको उस स्तर पे लाना।
हाँ, लेकिन जो श्रोता है उसकी भी स्वेच्छा है, उसकी भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है कि वो योग्य से योग्य भी कोई प्रवक्ता क्यों ना हो, यदि श्रोता योग्य ना हो और श्रोता को इच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं बनेगा भक्त। प्रभुपाद जी के संपर्क में कितने सारे लोग आए जो भक्त नहीं बने, अनेक लोग भक्त बन गए, उनके शरण में आ गए, कई लोग उनके संपर्क में आए, थोड़ी कुछ सेवा की उन्होंने और वो चले गए, थोड़े लोग आए उन्होंने सेवा भी ज़्यादा नहीं की, बस मिले इधर उधर आए चले गए, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि कई लोग दृढ़ता से भक्ति करने लग गए, थोड़े लोग इधर उधर रहे, थोड़ी बहुत करते रहे, फिर फिर बाद में चले गए, थोड़ा कुछ तो किया उन्होंने कम से कम, और कोई लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो वो भी अपने अपने हर एक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार होता है। तो प्रवक्ता को ये बताने होता है कि कौन कौन सामने बैठे हैं, कौन किस स्तर पे है, कौन किस तैयारी में है, क्या सुनने की तैयारी में है। तो प्रचारक को भी अनुमान लगाना पड़ता है दर्शकों को देखकर, श्रोताओं को देखकर, कि व्यक्ति सामने कौन है तो किस तरह से बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो मनुष्यानाम सहस्रेश सही है कि दुर्लभ ही है भक्तों को पाना, परंतु हमें पता नहीं कि कौन इनमें से वो दुर्लभ व्यक्ति है या नहीं। तो हो सकता है उन श्रोताओं में से कोई एक हो या दो हो, दस हो, पंद्रह हो, पहली बात। और दूसरी बात, भले वो भक्त न भी बने, कोई अज्ञात स्वीकृति तो प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को, सुनने वाला जो है, यदि उसने थोड़ी बहुत श्रद्धा से भी सुनी हो बात। यदि पूरी तरह से भक्ति में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन आने वाले जन्मों में ऐसे थोड़ी थोड़ी अज्ञात स्वीकृति एकत्र करते करते एक जन्म में किसी तो कहीं तो भक्त बन जाए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।